ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे, माता पिता बाप दादा के हम सभी अति सिकी लधे बच्चे, अति प्यारे बच्चे, बाप दादा से मंगल मिलन मनाने के लिए वरदानों से अपनी झोली को भरने के लिए अपनी वरिष्ठ दादियों और वरिष्ठ भ्राताओं से आशीर्वाद आशीर्वचन सुनने के लिए यहाँ पर इस शांति वन की पावन धरा पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ प्राण बाप दादा ने अपने वरदानों से अपनी शक्तियों से इस सुंदर और पावन स्थान को इतना सींचा है कि जहाँ के जरे जरे में, जहाँ के कण कण में प्राण बाप दादा की याद समाई हुई है। जब भी हम यहाँ आते हैं और विशेषकर अब तो हम बाप दादा से मंगल मिलन मनाने आए हैं, तो यहाँ का चार्ज्ड वातावरण, प्योर वातावरण, पीसफुल वातावरण हम सभी को कितना अट्रैक्ट करता है। जब भी यहाँ हम बाबा के बच्चे आते हैं और विशेषकर अपने अपने टर्न में बाप दादा से मंगल मिलन मनाने जब हम बच्चे आते हैं, तो हम सभी अनुभव करते हैं कि कितना ना दिल की खुशी, दिल का उमंग, दिल का प्यार यहाँ हम सभी आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आते ही हम सब अनुभव करते हैं कि हमारे पांव धरती पर नहीं है। आते ही सभी उड़ने लगते हैं, अपने आप को जैसे कि फरिश्ता अनुभव करने लगते हैं। कोई किसी प्रकार की रास्ते की थकावट नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ आगमन होते ही उमंग और उत्साह के, ज्ञान और योग के ऐसे पंख लग जाते हैं कि पूरा दिन हम बाबा की यादों में, ज्ञान के चिंतन में, मनन में, मंथन में ऐसे खोए हुए रहते हैं जो बात मत पूछो। तो कितने हम पद्मापदम भाग्यवान हैं जो आज यहाँ हम सबका आगमन हुआ है। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, ऐसा हर एक यहाँ प्रेजेंट आत्मा को अवश्य फील करना चाहिए। क्योंकि जब हम वहां से चलने की प्लानिंग करते हैं, तो बहुत से ऐसे भाई बहने होते हैं जिनका कोई ना कोई कारण हो जाता है, कोई ऐसा बंधन आ जाता है, सरकमस्टांस ऐसा बन जाता है कि जो यहां तक वो पहुंच नहीं पाते। कई बार तो हम देखते हैं कि एंड टाइम पर चलने लगे हैं तो कुछ ऐसी बात आ जाती है कि उनको रुकना पड़ जाता है। और एक आध बार तो ऐसा भी देखा है हमने प्रैक्टिकल, कि वहां से चलते हैं, रास्ते में आ रहे हैं तो वही रास्ते में ही कुछ फोन आ जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ है, रास्ते में ही फोन आ जाता है कि ये कारण है, वापिस आ जाओ जल्दी से। और कोई मधुबन में पहुंच जाते हैं, यहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा कारण होता है, यहां से ही उनको वापिस जाना पड़ता है। पर हम कितने भाग्यवान हैं, अपने भाग्य पर हम इतराएं, गौरव करें, खुश हो जाएं कि बाबा ने हमको यहाँ पर बुला लिया है, अपने घर में, अपने दर में, जहां पर आकर के पूर्णतया हम अपने आप को और भी चार्ज कर पाएंगे। आप सभी सुन रहे हैं बाबा की मुरलियां, लगभग 1 वीक से हम सभी देख रहे हैं कि बाबा की मुरलियों में मधुबन की महिमा की बातें आ रही हैं। बाबा के बच्चे बैठे हैं सभी मुरली सुनने वाले, तो सबको पता है कि बाबा यहाँ की महिमा मुरली में बीच बीच में बताते रहे हैं कि बच्चे यहाँ कितना खुला स्थान है, छतें कितनी बड़ी बड़ी हैं, तुम छतों पर घूमते हुए विचार सागर मंथन कर सकते हो। बच्चे तुम यहाँ आते हो बाप दादा से मिलन मनाने, यहाँ तुम्हें डबल लाइट मिलती है, डबल इंजन मिलता है ना। ऐसा बाबा ने मुरली में कितनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं यहाँ के विषय में हमको दी हैं कि बच्चे घर में तो कई काम याद आ जाते हैं, कई बातें हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो सिर्फ एक ही बात, बस ज्ञान और योग, बाबा की याद, और यहाँ कुछ है ही नहीं दूसरी बात, कुछ दूसरा करना ही नहीं, कुछ दूसरा सोचने का ही नहीं। इसलिए कितना अच्छा यहाँ पर आकर के गेन करके जाते हो, जिसको बाबा ने कहा कि यहाँ एक हफ्ता आप रुकेंगे, एक सप्ताह रुकेंगे तो एक साल के लिए आप खजाना इकट्ठा कर लेंगे, एक साल के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो आने से ही पहले बाबा ने कुछ दिन लगातार यहाँ मधुबन की महिमा हम सभी बच्चों को बार बार याद कराया। तो हम हैं वो बाबा के बच्चे जिनको हम कहें कि सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? जो 100 परिस्थितियां भी भले उसके सामने आई हों इस ज्ञान मार्ग में, लेकिन उन 100 परिस्थितियों को भी बाबा की याद और बाबा के साथ से उसने पार कर लिया हो, वो है सौभाग्यशाली। फिर हजार भाग्यशाली कौन? जो हजारों के बीच में रहते हुए भी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जिसके मन में एक की याद निरंतर बसी रहे, ऐसी जो कर्म योगी आत्मा सदा बाप के हाथ और साथ का छत्र छाया का हर पल हर कर्म में अनुभव करने वाली आत्मा, वो है हजार गुना भाग्यशाली। फिर हम बात करते हैं लाख करोड़ की, तो लाखों करोड़ों में से भगवान ने हमें चुना है, उनकी नजर हम पर गई है, उन्होंने अपने लायक हमको समझा है, अपनी सेवाओं के लायक हमको समझा है, हम पर वो विश्वास किया है कि यही थे बच्चे, यही हैं और यही भविष्य में श्रेष्ठ सूर्यवंशी पद को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। तो ऐसा हम सबको बाबा ने लाखों करोड़ों में से चुना है। फिर हम हैं पद्म भाग्यशाली कौन? जो कदम उठाएं और पद्म बन जाएं, जिनके कदमों में पद्मों की प्राप्ति हो। रोज मुरली में जाते हैं, कदम उठाकर जाते हैं, तो जितने कदम उठाते हैं कदम कदम में पद्मों की प्राप्ति, एक एक विचार में पद्मों की प्राप्ति, एक एक संकल्प में पद्मों की प्राप्ति, एक एक क्षण में पद्मों की प्राप्ति। तो इतनी पद्मा पद्म प्राप्ति करने वाली हम पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं हैं, जो कि केवल एक जन्म नहीं, मिनिमम 21 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म अपने भाग्य को इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच, इतना सर्वोत्तम बनाने वाली हम वो भगवान की सिलेक्टेड सोल्स हैं, वो चुनी हुई आत्माएं हैं। हम सभी भक्ति मार्ग में क्या गाते थे? चरणों की धूल हैं, हे भगवान हम तो तुम्हारे दास हैं, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, हम तो तुम्हारे नौकर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, क्या क्या हम गाया करते थे, क्या क्या बोला करते थे। और अपना एक गीत भी बहुत सुंदर है, चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगते थे भक्ति मार्ग में, हे भगवान अपने चरणों में भी हमें रख लो तो ये भी बहुत बड़ा हमारा भाग्य होगा, ऐसा हम कहा करते थे, गाया करते थे। लेकिन जब भगवान मिला तो भगवान माना क्या? भगवान माना बाप। तो बाप कभी बच्चों को चरणों में नहीं बिठाएगा। वो आया और क्या किया कर उसने, चरणों में थे ना, चरणों से उठाया, उठो तुम मेरे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो तुम, तुम्हारा स्थान कोई चरणों में थोड़ी है, उठो। और उठा करके क्या किया, चरणों से उठाया और अपनी गोद में यहां बिठाया। हाँ, जोर से बजाओ ताली। और हम नन्हे नन्हे बच्चों को इमेजिन करो, मैं नन्हा सा छोटा सा फरिश्ता भगवान की गोद में, और भगवान गोल्डन मोर के पंख से मेरे मस्तक के ऊपर मेरे भाग्य की रेखाएं लिख रहा है। वो स्वयं भाग्य विधाता बाप मेरे मस्तक पर मेरे भाग्य को लिख रहा है। देखिए क्या कितना बड़ा है हमारा सौभाग्य कि उसने हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया, हम उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो गए, उसका सब कुछ हमारा हो गया। अब ये कोई आम इंसान का कुछ नहीं, भगवान का सब कुछ, भगवान का सब कुछ हमारा हो गया क्योंकि हम उसके बच्चे हो गए। अब यहां भी उनको जमा नहीं, गोद से उठाया और कहां बिठाया, अपने दिल तखत पर, मतलब उससे भी ऊंचा ले गए, गोद से उठाकर हमें अपने दिल तख्त पर स्थान दे दिया। देखिए कितना बड़ा भाग्य है, दिल तख्त, और वो भी भगवान का दिल तख्त जिसके ऊपर उसने हमें स्थान दिया। परंतु फिर बाबा कहते कोई कोई बच्चे नटखट होते हैं, मैं तो उनको अपने दिल पर स्थान देता हूँ, उनको दिल तख्त नशीन बनाता हूँ, परंतु मेरे दिल पे बैठ के भी ना वो क्या करते हैं, बाहर झांकते रहते हैं, बाहर झांकते रहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या है, वो दुनिया का बाह्य आकर्षण अट्रैक्शन उनको खींचता रहता है। परंतु अगर कोई अच्छे से समझ ले तो भगवान के दिल तखत से ऊपर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये तो मेरा कितना ऊंच सौभाग्य, भगवान ने मेरे को अपना दिल तख्त सौंपा है, और इतना बड़ा दिल तख्त है भगवान का जिस पर सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं चलते फिरते रहें, कर्म करते रहें, सब कुछ करते रहें, तो भी ये दिल तख्त इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सभी को भगवान इस दिल तख्त के ऊपर स्थान दे देते हैं। तो मैं हूँ भगवान की दिल तख्त नशीन आत्मा, वो भी नहीं जमा, और ऊपर उठो बच्चे, तुम हो मेरे गले का हार, तुम हो मेरे विजयी हार, गले का हार, और भी नजदीक, गले का हार बना लिया। और फिर उसके पश्चात और ऊपर उठाया तो हमें अपने मुख की मुस्कुराहट बना लिया, मुख की मुस्कुराहट। और फिर उससे भी ऊपर ले गए, कहां, नैनों में समा लिया, नैनों का नूर बना लिया, हम हो गए भगवान के नूरे रत्न, नूरे रतन, नूरे जहान, जहान के नूर, भगवान के नूर, बन गए और फिर उनको आया इससे भी कहीं ऊपर जगह दूं, उससे भी ऊपर हमको अपने मस्तक की मणि बना दिया, मस्तक मणि, मस्तक मणि। और फिर मस्तक मणि से भी ऊपर क्या बनाया, सिर का ताज, और ताज में भी सबसे ऊपर जड़ी हुई ताज की मणि। तो कहां पड़े थे, क्या थे और क्या से क्या बना दिया, इसको हम कहेंगे कितना लंबा डिस्टेंस है ये, कहां थे और कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया, क्या थे और हम बच्चों को क्या बना दिया। तो मुरली में बाबा कई बार कहते हैं ना कि मैं आकर के माताओं को जिनको पांव की जुत्ती समझा था जगत वालों ने, उनको मैंने आके अपने सिर का ताज बना दिया। खास देखो माताओं पर भी खास नजर गई बाबा की, वंदे मातरम कहा, और माताएं जो कहां कहां किस हालात में, उनके प्रति नजरिया था, उनके प्रति संसार का दृष्टिकोण था, आकर के उस गौपाल ने उन गौओं को संभाला, आकर के उस कन्हैया ने उन कन्याओं को अपना बनाया, और उन पवित्र कन्याओं के द्वारा सारे विश्व के कल्याण का कार्य किस तरह से प्यारे बाबा आकर के करा रहे हैं। तो जब इतना ऊंचा भगवान हमें उठाते हैं, इतना ऊंच ले जाते हैं, तो अब हम बच्चों का फर्ज क्या है, हमको क्या करना है, हमको बराबर उनके श्रीमत पर चलना है। श्रीमत ही हमारे लिए आईना है, और श्रीमत हमें कहां से मिलती है, विशेषकर श्रीमत हमें मिलती है मुरली के माध्यम से, उस मुरली के एक एक महावाक्य के साथ हम अपना मिलान करते चलें, एक एक महावाक्य के साथ अपने आप को देखते चलें कि ये मेरे जीवन में है, ये श्रीमत मेरे जीवन में है, ये श्रीमत मेरे जीवन में। वो हमें एक एक बाबा की मुरली का सेंटेंस रूपी महावाक्य से वो श्रीमत, वो आज्ञा, वो आदेश, निर्देश, संदेश मिलता रहता है। तो किस तरह से दृढ़ संकल्प धारी होकर के हम बाबा के उस एक एक महावाक्य को अपने जीवन के अंदर उतारें। एक एक महावाक्य को जीवन में उतारने पर क्या होगा, हमारा पूरा ही जीवन निखर जाएगा। जो आत्मा रूपी सुई के ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ है, मैल चढ़ा हुआ है, जंक चढ़ी हुई है, बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे, वो सारी की सारी जंक जो जन्म जन्मांतर से आप आत्मा रूपी सुइयों पर चढ़ी हुई है, वो सारी की सारी जंक श्रीमत की रगड़ से, ज्ञान की रगड़ से, योग की रगड़ से ऑटोमेटिकली उतरती जाएगी, और आप वो जो जंक वाली सुई जो काम की नहीं रही थी, अब वो सुंदर ऐसी हो जाएगी कि अपना काम करना शुरू कर देगी। तो कितना जीवन में परिवर्तन, कितना निखार, कितना सुधार, कितना शाइनिंग हमारा जीवन हो जाएगा जब हम बरोबर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल रूपांतर हमारे जीवन के अंदर आ जाता है। तो इसलिए बाबा की श्रीमत, अमृत वेले उठना, रोज बाबा मुरली में अधिकतर बीच बीच में प्रेरणा देते रहते हैं कि बच्चे अमृत वेले का समय ऐसा समय है कि उस समय बाबा का ऐसा वरदानी रूप होता है कि सहज ही बच्चों को वरदानों से, शक्तियों से भर देते हैं, जिससे पूरा दिन सुचारू रूप से हमारी जो कर्म रूपी पटरी पर कर्म योगी होकर के हम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। अगर किसी आत्मा का अमृत वेला मिस हो गया तो क्या होता है, उठते ही पहला थॉट उसको क्या आएगा, ओहो ओहो आज तो अमृत वेला मिस हो गया, तो दिल शिकस्त से हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही श्रीमत की अवज्ञा हो गई। और अगर उस श्रीमत पर हम बरोबर चले उठे और अच्छी तरह से बाबा के सामने अलर्ट होकर के बैठे, उनके वरदानों को हमने प्राप्त किया, शक्तियों को प्राप्त किया, बाबा से बातचीत की, रू रिहान की, और फरिश्ता बनकर के विश्व की सेवा बाबा के साथ साथ घूमते हुए की, तो कितना एनर्जी सवेरे सवेरे भर जाएगी, अमृत वेले भर जाएगी। तो जैसे माँ बच्चे को सुबह सुबह नहलाती है, फिर उसको श्रृंगार करती है और भोजन खिलाती है, डाइट देकर के फिर उसको छोड़ देती है, परंतु छोड़ देने के बाद भी क्या टोटल माँ कर्म में लिप्त हो जाती है कि वो बच्चे की तरफ ध्यान ही ना दे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ऐसे ही प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को सुबह सुबह जब हम बाबा से वरदान लेते हैं तो उन वरदानों से हमारा श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से सुसज्जित करते हैं, और फिर मुरली के माध्यम से डाइट हमें देते हैं, और हमारा श्रृंगार करके फिर फील्ड में हमें छोड़ देते हैं, फिर हम कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बन करके कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा का ध्यान हम बच्चों की तरफ होता है, फिर भी हमारी तरफ उनका ध्यान होता है। तभी तो बाबा बताते हैं कि बच्चे, कोई कोई बच्चे दिन में 5 मिनट भी मुझे याद नहीं करते, आता है ना मुरली में। तो अगर बाबा का ध्यान हमारी तरफ ना हो तो कैसे बाबा बताएंगे, तो कौन कितना याद करता है। क्योंकि कहा जाता है याद को याद खींचती है, प्यार को प्यार खींचता है, जितना हम बाबा को याद करते हैं बाबा हम बच्चों को याद करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन अंदर से जो है एक दूसरे के साथ मन की तार जुड़ जाती है। तो इसलिए अमृत वेला, फिर बाबा की मुरली प्रतिदिन, जिसके लिए बाबा हमेशा ही कहते हैं बच्चे एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई है कि सिर्फ एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्मों की बेहद प्राप्ति कराने वाली, कितना ऊंच स्टेटस देने वाली ये बच्चे ये पढ़ाई है। ये रतन है ज्ञान के, अनमोल हीरे मोती हैं। ये कोई सिंपल वर्षन किसी सिंपल टीचर के नहीं है, ये सुप्रीम टीचर कितने दूर से आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। इसलिए वैसा ही कदर हमारे मन में हो, वैसी ही वैल्यू हमारे मन में हो, कुछ भी काम हो लेकिन मुरली मिस कभी ना हो, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट काम शायद कोई भी नहीं है संसार में। सबसे इम्पोर्टेंट काम गॉडली स्टूडेंट के लिए बाबा की मुरली है, क्योंकि एक दिन मिस करेंगे आदत पड़ जाएगी कोई बात नहीं, और आजकल तो व्हाट्सएप पे पढ़ लेंगे, आजकल तो सोशल मीडिया के इतने चीजें हैं, कहेंगे जी हम इनसे पढ़ लेते हैं, परंतु एक होता है सेंटर पर जाकर मुरली सुनना, एक है व्हाट्सएप से मुरली पढ़ना। तो आप सभी को अच्छे से इस चीज का अनुभव है, एहसास है कि सेंटर पर जाने से जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, जो आपस में एक दैवी परिवार की भासना आती है, जो संगठन की पढ़ाई और संगठन का योग होता है, हाँ, बेहद बाप दादा सामने बैठकर पढ़ा रहे होते हैं, वो एक अलग ही अंदाज होता है बाबा के पढ़ाने और हम बच्चों के पढ़ने का। जिसको कहें रात और दिन का फर्क बाबा मुरली में बताया करते हैं, तो ये रात और दिन का अंतर हो जाता है। इस तरह से अपने आप पढ़ने का अथवा सेंटर पर जाकर मुरली सुनने का। अब आप देखिए, घर बैठे व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं तो भोग तो वहां नहीं मिल जाएगा ना। अब सेंटर पर जाएंगे, हाँ, बाबा का भोग भी प्राप्त होगा, देवी परिवार से, बहनों से, सबसे मिलन होगा, यज्ञ के करीब भी आएंगे और यज्ञ की हर इन्फॉर्मेशन जो है, जो डायरेक्शन मधुबन से जाते हैं वो सब के सब हमें पता चलेंगे और हम जीवन में उनको क्रियान्वित करेंगे। दूर बैठे बैठे तो हम कुछ भी और कुछ नहीं कर पाएंगे, सिंपल वे में पढ़ेंगे और उसमें भी पता नहीं 2-3 मिनट में ही सारी मुरली को हम पूरा कर देते हैं। और फिर देखिए कर्म योग, सारा दिन करण करावन हार बाप मेरे साथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूँ, मैं ओनली इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, करण करावन हार बाबा करा रहे हैं, चला रहे हैं, किसी भी सेवा के लिए निमित्त बना रहे हैं, मैं केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, बाबा करण करावन हार है, वही करा रहे हैं। तो इस बात की भी अच्छी तरह से हमारे मन में स्मृति हर वक्त रहे, तो फिर देखिए कितना इजी, जिसको बाबा कहते सहज, हर कार्य, हर सेवा, हर बात सहज 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 हो जाएगी। क्योंकि जब भगवान साथ है, करण करावन हार साथ है, तो मुझे करना क्या है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, वो और ही मुझे निमित्त बना के मेरा भाग्य बना रहे हैं, बस इसके अलावा और ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है, कर करा तो सब वही रहा है। तो कितना सुंदर, कितना प्यारा ये हम बाबा के बच्चों के जीवन का हरेक का अनुभव है कि कितना हम लाइट रहते हैं जब हम उस करण करामन हार बाप को साथ रखते हैं, तो इजी गोइंग सब कार्य फटाफट फटाफट हमारे होते चले जाते हैं। तो इसलिए अमृत वेले से उठते रात्रि सोने तक हम बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग, बाबा के नियम और मर्यादाएं जो बताई हैं यज्ञ में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते चले जाते हैं तो योग भी हमारा सहज हो जाता है और सहज योगी जीवन बन जाता है। फिर योग लगाने की बात नहीं आएगी, क्योंकि लगाते हैं इट मीन्स टूटता है फिर लगाना पड़ता है, टूटता है फिर लगाना पड़ता है, लेकिन तब जीवन ही सहज योगी जीवन होता है। और बाबा कहते हैं ना मुरली में कि जीवन तो सदा ही होता है, जब तक आत्मा शरीर में है तो जीवन कहेंगे ना, तो जीवन तो सदा ही है, तो हम सहज योगी जीवन वाले बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा योग निरंतर लगा हुआ ही रहता है बाबा के साथ, जीवन ही डिवाइन बन जाती है, दिव्यता, पवित्रता, सात्विकता, इसका समावेश ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हुआ रहता है। तो बाबा की श्रीमत को, बाबा के आदेश और निर्देश को, बाबा की आज्ञा को पालन करने के लिए सिर्फ हमें अपने जीवन में एक काम करना होता है, वो क्या, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प अथवा दृढ़ता। दृढ़ता की पटरी पर जब हम चलते चले जाएंगे तो फिर सफलता ऑटोमेटिक हमारे गले का हार बन जाएगी। तो इसलिए हमें दृढ़ संकल्प धारी बनना है हर बात में, हर बात में, चाहे वो अमृत वेले में, चाहे मुरली सुनने में, चाहे कर्म योगी बनने में, बाबा के हाथ और साथ में, किसी भी सेवा को करना है, मिली है तो दृढ़ता पूर्वक करनी ही है, बाबा ही मुझसे चाह रहे हैं, मुझे करना ही है, दृढ़ता। तो जब जीवन में दृढ़ता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हर चीज के अंदर हमें सफलता मिलती रहेगी, सफलता हमारे गले का हार बन जाएगी और जैसे कि हमारे मस्तक पर विजय का तिलक सदा ही हम लगा हुआ अनुभव करेंगे। विजयी भव का जो वरदान बाबा हम बच्चों को देते हैं, वो विजयी भव का वरदान प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में उतर आएगा जब हम दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हर बाबा की बात को दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर के मुझे करना ही है। एक है करना है, दूसरा है करना ही है, तो अंडरलाइन हो गई बात की करना ही है। तो इस पर छोटी सी एक आपको बात बताते हैं कि दृढ़ता से फायदा कितना होता है। एक बार कहते एक नास्तिक व्यक्ति जा रहा होता है, वो दूर सामने देखता है कि एक सत्संग चल रहा है। अब वो नास्तिक है, वो मन में सोचता है कि मुझे एक भी बात सुननी नहीं सत्संग की, क्योंकि वो दृश्य देख रहा होता है कि एक महात्मा जी बैठे हुए हैं मंच पर, सामने बहुत सारी सभा बैठी हुई है, तो ये सत्संग है। अब वो दूर है, उसको सुन तो रहा नहीं, माई की आवाज तो कुछ आ नहीं रही, बट दृश्य देख पा रहा है वो। तो आगे चलता जा रहा है, उसको लगा कि अब थोड़ा मैं नजदीक जैसे ही जाता जा रहा हूं तो थोड़ी हल्की सी जैसे कि लगता कि अब आवाज आना शुरू हो गई है और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो तेज आवाज आएगी और मैं मुझको ये सुनना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, कस के अपने कान में उंगली दे देता है कि मुझे एक भी सेंटेंस इस महात्मा जी का सुनना नहीं है। ऐसे कस के कान में उंगली दे करके जा रहा होता है, जब बिल्कुल महात्मा जी जहां प्रवचन कर रहे होते हैं उनके बिल्कुल सामने से जब उसने गुजरना होता है तो वो अपने ध्यान में चला जा रहा है कानों में उंगली देकर के, लेकिन रास्ते में एक पत्थर पड़ा होता है, उसका पैर टकरा जाता है उस पत्थर से और वो लड़खड़ा जाता है, उसके कान से उंगली निकल जाती है। तो जैसे ही उसके कान से फिर उंगली बाहर निकल जाती तो एक सेंटेंस महात्मा जी के प्रवचन का उसके कान में चला जाता है। महात्मा जी उस समय बता रहे होते हैं कि दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान होती है, दृढ़ता में सफलता होती है। बस इतना ही वो सुन पाता है, फटाफट दोबारा संभल के अपने कान में कस के उंगली फिर से दे देता है, लेकिन एक सेंटेंस जो सुनता है बड़ा परेशान हो जाता है उसको सुन करके, और रास्ते में अपने चला जा रहा है वो, लेकिन वो सेंटेंस उसको परेशान कर रहा है, ये क्या समझाना चाह रहे थे महात्मा जी, दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान है, दृढ़ता में सफलता होती है, आखिर क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हीं थॉट सिस्टम में, उन्हीं संकल्पों में वो व्यक्ति आगे जाता जा रहा होता है और धीरे धीरे वो अपने घर भी पहुंच जाता है, परंतु ये संकल्प ये सेंटेंस उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये हालत होती है उसकी जैसे शांत खड़े पानी के अंदर अगर आप कोई कंकड़ फेंक दो तो क्या होता है, लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही उसके मन में ऐसा ज्ञान के सेंटेंस का एक कंकड़ क्या पड़ा, वो लहरें उठनी शुरू हो गई और वो लहरें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और वो घर में पहुंच गया, परंतु वो फिर यही आ रहा है कि क्या है दृढ़ता की शक्ति, क्या कहना चाह रहे हैं महात्मा जी। तो अब वो परेशान सा होके सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं भी एक संकल्प करके देख लेता हूँ आखिर होता क्या है। तो नास्तिक है तो संकल्प भी ऐसे ही लेता है, वो कहता है कि मैं ना अब रोज सवेरे उठ करके प्रतिदिन अपने पड़ोसी की शक्ल देख करके नाश्ता करके फिर ही काम पर जाया करूंगा। अब ये दृढ़ संकल्प ले लेता है, एक हफ्ता हो जाता है कि वो प्रतिदिन सुबह नहा धो के पड़ोसी के घर जाके मेन जो हेड होता है पड़ोसी उसकी शक्ल देख के फिर आके भोजन करके अपने काम पे जाता है। परंतु जब आठवें दिन वो अपने पड़ोसी के घर जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है जाने में, तब तक उसका पड़ोसी अपने काम पे निकल चुका होता है। लेकिन घर के लोग देखते हैं कि ये बंदा रोज आता है, घर के मुखिया से मिलने पता नहीं क्या काम होता है, तो वो उसको कहते हैं कि आप रोज आते हो, मालूम नहीं आपको क्या काम होता है उनसे, लेकिन आपको पता है ना कि मिट्टी खोदने का हमारा काम है, तो आज वो मिट्टी खोदने चला गया है जंगल की फलां दिशा की तरफ। अब इसने तो दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे उसकी शक्ल देख के ही भोजन करना है। अब भागता दौड़ता जंगल की उसी दिशा की तरफ पहुंच जाता है। तब तक वो उसका पड़ोसी जिसकी उसने शक्ल देखनी होती है, वो काफी मिट्टी खोद खोद करके गहरा खड्डा कर चुका होता है। खड्डा खोदते खोदते उसको चार सोने की मोहरें दिख जाती हैं। उन मोहरों को जैसे ही वो देखता है तो गर्दन खड्डे से बाहर निकालता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई कह दे ये मेरी है या कुछ। ऐसे खड्डे से गर्दन जैसे ही बाहर निकालता है, इतने में जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है उसकी शक्ल देखने की, वो भी मुश्किल से 5-7 कदम की दूरी पे होता है। तो जैसे ही इधर से ये खड्डे से बाहर निकालता है गर्दन, उधर से वो 5-4 कदम की दूरी पे, तो दोनों का आईज कम्युनिकेशन हो जाता है। मतलब जिसने शक्ल देखनी थी वो शक्ल देख लेता है। तो जैसे ही वो शक्ल देख लेता है, उसके मन में आता है अरे मैं आज बहुत लेट हो गया हूँ, भोजन भी करना है, काम पे भी जाना है, तो मुड़ के फटाफट तेज कदमों से वापिस चलने लगता है, दौड़ने जैसा जल्दी जल्दी। तो अब खड्डे वाला जो होता है वो उसको आवाज देता है, भाई ठहरो ठहरो। वो कहता है बस देख लिया। क्या देख लिया? वो कहता है कि भी मैंने शक्ल देखनी थी देख ली। वो तो यही बताता है कि मैंने देख लिया बस, मतलब शक्ल देखनी थी देख ली। पर खड्डे वाला क्या समझता है कि चार जो मोहरें निकली है ना वो इसने देख ली। तो वो फटाफट खड्डे से चार मोहरें लेके उसके पीछे पीछे तेज दौड़ता है और जाकर ऐसे पीछे से इसको पकड़ लेता है, कहता है भाई देखो ये चार ही तो निकली हैं, चार ही तो निकली हैं, क्या करो, दो आप ले लो तो मैं ले लेता हूं। अब उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं था शक्ल देखने वाले को कि निकली भी है मोहरें या थी भी, परंतु वो सोचता है ज्यादा डिबेट डिस्कशन की क्या जरूरत है, तुझे दो सोने की मोहरें दे रहे हैं ना तो ले ले आराम से। आराम से कहता है कोई बात नहीं, ऐसे दो मोहरें लेके वो चल पड़ता है। पर रास्ते में जाते जाते उसकी बुद्धि में, उसके मन में ये बात आती है कि महात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि दृढ़ता की शक्ति बड़ी महान होती है। मैंने भी दृढ़ता करके पीछे तक आया और मेरे को आराम से दो सोने की मोहरें मिल गई। सो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी जब दृढ़ निश्चय बुद्धि बनते हैं, और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है और बाबा भी हमेशा मुरली में कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयन्ति संशय बुद्धि विनाशन्ति। तो दृढ़ निश्चय बुद्धि हम बने, दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर के हम धारणा करें तो हम भी ठीक अनंत ज्ञान के रत्नों, अनंत शक्तियों, बाबा के अनंत वरदानों, अनंत आशीर्वादों के जैसे कि हम भी उसमें सराबोर हो जाएंगे, उन प्राप्तियों से लबालब भर जाएंगे, और हम भी जिसको बाबा कहते हैं कि मैं सागर हूँ हर चीज का, प्यार का भी सागर हूँ, सुख का भी सागर हूँ, पवित्रता का भी सागर हूँ। पिछले 4-5 दिन की मुरलियों में बाबा ने खूब कैसे बाबा हर चीज का सागर है, सुख का सागर, प्यार का सागर। तो हम भी क्या बन जाएंगे, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर सुख का सागर, मास्टर शांति दाता, बाबा के सब गुणों में उनके हम बच्चे, हम आत्माएं भी मास्टर सागर बन जाएंगी। इतनी भरपूर हो जाती हैं एक संकल्प से कि मुझे दृढ़ निश्चयी होकर के बाबा के एक एक महावाक्य को, एक एक वर्षन को अपने जीवन में उतारना ही है। फिर क्या हो जाएगा, जब हम अपने आप को संपन्न भरपूर मास्टर बना लेंगे, तो फिर मास्टर दाता बांटने का काम, जिसको बाबा कहते हैं कि निकट भविष्य में हम सब बच्चों को अच्छे से पता है कि कौन सा समय हमारे नजदीक आ रहा है, और अभी भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं दुनिया की आत्माओं को, किस हालत से आत्माएं गुजर रही हैं, कितने दुखी, कितने अशांत, कितने परेशान, कितनी उलझन समस्या परिस्थितियों में जूझ रही हैं आत्माएं, कितनी उनको सुकून की जरूरत है, कितनी शांति की, कितनी शक्ति की, कितनी पवित्रता की उन आत्माओं को दरकार है, जरूरत है। अब उनको देगा कौन? बाबा की आशाओं के दीपक कौन है? हम बच्चे हैं ना। तो इसलिए वो समय जब नजदीक आ रहा है, जैसे बाबा बताते कि जब आग लगती है तो सभी लोग सेफ स्थान ढूंढते हैं, भागते हैं कि कहीं पे सिक्योर सेफ स्थान हो, जहां ठंडक हो, शीतलता हो। आग की तपत से हर कोई भागेगा। तो अब वही है कि तमो प्रधानता इस वर्ल्ड में चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। तमो प्रधानता की वाइसिस की अग्नि इतनी जोर से प्रज्वलित हुई भी पड़ी है, बढ़ भी रही है आगे। तो ऐसे टाइम में हर आत्मा सहारा ढूंढेगी, हर आत्मा किनारा ढूंढ रही है, कहां जाएं, किधर जाएं। तो बाबा के स्थान शांति कुंड, शीतलता के कुंड, प्योरिटी के कुंड, शक्ति के कुंड, और जहां जहां पर बाबा के बच्चे रहते हैं, जिस स्थान पर एक एक बाबा का बच्चा कोई कम नहीं, एक एक जैसे कि शांति का कुंड है जहां पर वो आत्मा रह रही है जिस परिवार के अंदर, यही हमारा सबसे पहला कहें प्राप्ति है कि हम देखें कि जिस स्थान पर मैं हूं आत्मा, मेरे इर्द गिर्द पूरा शांत प्योर ऐसा वातावरण बन गया है उस स्थान पर। तो क्योंकि उन सभी स्थानों पर आत्माएं आएंगी शफा लेने के लिए, सुकून लेने के लिए, दुआ लेने के लिए, शांति लेने के लिए। तो ऐसा हम वो शांति कुंड क्रिएट कर दें कि जो भी आए, अभी से ही आपको पता चल जाएगा जब आपके ग्रस्त आश्रम में जब कोई बाहर से आता है और वो बोलता है यहाँ आकर आपके यहाँ बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़े अच्छे वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकल सब आपके द्वारा अच्छे से हो रहा है, वो जो बाबा चाहते हैं वो हो रहा है। तो इसलिए इतना और भी जो भी थोड़ी बहुत कमी कमजोरी अवगुण छोटा मोटा कहीं भी जो छिपा हम आत्माओं के अंदर रह गया है, उसको भी हम दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर के निकालें अपने अंदर से, ताकि बिल्कुल संपूर्ण शांति का कुंड ऐसा बन जाए कि हर आत्मा आकर के सुकून और शफा जैसे हमारे वो नजदीक पहुंचे तो उसको ऐसी अनुभूति हमसे हो। क्योंकि अंत में ये क्यों लगनी है हमारे सामने, उस समय ज्यादा ज्ञान बोल के भी देने की समय नहीं होगा। इतनी अपने अंदर से एनर्जी, जो 7 वैल्यूज हैं हमारी कोर वैल्यूज, इतनी उनके अंतर्गत एनर्जी का जैसे कि एक स्क्रीन होती है बना, अपने अंदर हम क्रिएट कर लेंगे तो जो भी सामने आए एक ऐसे बस हल्की सी एक दृष्टि से ही जैसे कि उस आत्मा के जन्म जन्म की जो है इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, जन्म जन्म के जो दुख शांति में भटक रहे हैं वो उनको सुकून की ऐसी लहर एक दृष्टि से ही मिल जाए। तो जब हम सभी बाबा के बच्चे बाप समान बनेंगे इस बात में, तभी इतनी बड़ी जो दुनिया है उसको हम सुकून और शांति दे सकेंगे, और हमारे जलन और चेहरे के द्वारा ही बाबा कहते बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाप की प्रत्यक्षता के लिए हमारा चेहरा, हमारी चलन, तभी सबके सामने प्रत्यक्ष कर पाएंगे हम बाप को, जब पहले अपने अंदर इन सभी गुणों को अच्छे से हम भर लेंगे। तो फिर फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, जो हमारे अंदर जैसा होगा, अंदर से मान लीजिए कोई अशांत है या थोड़ा चिंता में है या परेशानी में है, नेचुरल है कि उसके फेस पर आएगा। अंदर से खुशी है, शक्ति है, बाबा का प्यार भरा हुआ है, तो उस आत्मा के फेस रिफ्लेक्शन से वो सारी की सारी चीजें बाहर रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसलिए इस चीज के ऊपर भी हम विशेष अटेंशन रखें, क्योंकि हम भविष्य देवता बनने जा रहे हैं। तो ये नहीं कि वहां जाकर हम बनेंगे, यहां से ही पहले वो हमारे दातापन के संस्कार प्रैक्टिकल जितने हाईएस्ट लेवल पर होंगे, उतना ही हाईएस्ट लेवल का हम देव पद, सूर्यवंशी पद प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यहां से ही हम दातापन के संस्कार लेने की बात को बिल्कुल अब मन से समाप्त कर दें। कोई मुझे मान दे, शान दे, रिगार्ड दे, रेस्पेक्ट दे, पूछे, ये करे, अगर ये छोटी 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 बातें भी अभी तक हमारे मन में होंगी और इन चीजों के सामने आने पर हम परेशान होंगे कि किसी ने हमको रिगार्ड नहीं दिया, देना चाहिए था जितना, पूछा नहीं हमको, या कुछ ऐसी छोटी 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 भी बातें आएंगी, तो वास्तव में ये हमारे अंदर की शक्तियों को लीक करती हैं। पता भी नहीं चलेगा आपको कि शक्ति लीक होती चली जाएगी इन छोटी छोटी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के कारण। तो इसलिए देखें अपने आप को, चेक करें। जैसे बाबा कहते हैं कि सिर्फ रात को चेक करने की बात नहीं है कि हम चार्ट चेक करें, पूरा दिन तो हमारा चला गया, लेकिन रात को हम चेक करने बैठे तो क्या होगा, पूरा दिन तो निकल गया ना, जो वेस्ट होना था हो गया। परंतु जैसे आईने की तरफ ऑटोमेटिकली कदम चले जाते हैं अपने आप को देखने के लिए कि मेरा सब कुछ सेट है, तो ऑटोमेटिक दिन में कईयों की आदत होती है तो 5-10 बार ऐसे चले जाएंगे। तो ज्ञान के दर्पण में भी, यानी इंट्रोस्पेक्शन करें हम, अंतर्मुखी होकर के अपने आप को चेक करें, देखें अपने आप को कि ये छोटी 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 चीजें अभी तक हमको सता तो नहीं रही, परेशान तो नहीं कर रही, मैं मेरे में मांगने के यानी लेने के वो संस्कार अभी तक तो नहीं, क्योंकि मैं हूं दाता का बच्चा। मेरा काम है सागर और सूर्य की समान, ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य के समान अविरल, अनवरत, बेहद देते रहना, बांटते रहना, हर वक्त बांटते रहें। और फिर बांटने से जितनी अपने अंदर खुशी क्रिएट होती है, उस खुशी से ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी आपके चेहरे के द्वारा। तो इसलिए हम ये दृढ़ संकल्पधारी बन जाएं इस बात में भी कि मुझे मांगना नहीं, लेने की भावना नहीं रखनी, मुझे सदा देना है, देना है, देना है, और देते ही चले जाना है। फिर देखिए कितना खुशियों का जैसे कि लहरें आपके अंदर चलने लगेंगी। तो एक छोटी सी बात कि एक बार एक गांव के अंदर एक सेठ होते हैं, सेठ बहुत कंजूस सेठ होता है, उस गांव में एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी देखते हैं कि इस गांव के अंदर कोई भी मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर ही नहीं है इस गांव के अंदर। तो वो 8-10 लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कहते हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, हमारी भी इच्छा कई बार प्रकट होती है परंतु हम नहीं प्रैक्टिकल कर पाए, हम भी चाहते हैं कि मंदिर होना चाहिए। तो पूछते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसा है क्या कि कोई ऐसे दानी सेठ हो या बड़े बड़े अवरिच लोग हों जिनसे कुछ दान इकट्ठा किया जाए क्यों मंदिर बनाने के लिए देखो पैसे के बिना तो बनेगा नहीं, तो जरूरत है। वो कहते हाँ महात्मा जी, एक है तो सही सेठ बहुत पैसे वाला, परंतु उसकी दान की वृत्ति बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक रुपया भी देने को तैयार, धार्मिक काम के लिए वो तैयार नहीं होता। वो कहता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम चलो मेरे साथ। 10-15 लोगों को ले लेते हैं और उस सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं महात्मा जी, और उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके गांव में सबकी भी इच्छा है और हम भी आए हैं, देखा मंदिर नहीं है, तो हमारी इच्छा है कि एक मंदिर भगवान जी का निर्माण किया जाए, जहां प्रतिदिन लोग जाएं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें, वरदान लें, सुख शांति उनको मिले, प्रभु का भजन या उनको याद कर सकें, कुछ ऐसा प्लेस हो जाए। तो वो सेठ जी कहते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ जो आप कहना चाहते हैं, परंतु यहां से एक पैसा भी मिलने वाला नहीं आपको। महात्मा जी देखते हैं उसके बात के रवैये को, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं सेठ जी, एक काम तो आप कर देंगे क्या, हम आपसे पैसा नहीं लेते, परंतु एक 50,000 रुपए का आप हमें चेक दे दें, जिस चेक को हम शाम को 6 बजे आके आपको एज इट इज वापिस कर देंगे, हम आपका पैसा नहीं रखेंगे, इतना तो कर सकते हैं आप। कहते हाँ चलो कोई बात नहीं, इतना तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो मैं कर देता हूँ, चेक दे देता हूँ, शाम को 6 बजे लौटा देना। तो लिख करके चेक दे दिया। अब वो 15 लोग प्लस महात्मा जी पूरे गांव में अच्छे अच्छे लोगों के पास घूमे उस चेक को लेकर के, देखो उन सेठ जी ने भी ये सहयोग दिया है, भी सहयोग तो है, चेक पकड़ाया है, इतना भी सहयोग, ये सहयोग दिया है, आप सभी भी सहयोग करें तो बड़ा अच्छा मंदिर का निर्माण हो सकता है। वो बेचारे दंग रह जाएं अंदर से, वो सेठ एक रुपया ना देने वाला, 50,000 का चेक, हाँ बिल्कुल महात्मा जी हम भी करेंगे, जरूर करेंगे, वो भी साथ साथ सब हेल्प किए जा रहे हैं, मदद किए जा रहे हैं, प्लस उनको सेठ जी को फोन कर रहे हैं, सेठ जी कमाल कर दिया आपने, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको लोगों की। दूसरा फोन कर रहे हैं, सेठ जी बहुत आशीर्वाद के पात्र हो गए, सेठ जी कमाल का काम कर दिया आपने, ऐसे फोन पे फोन जा रहे हैं उसके पास। तो हुआ क्या, जब शाम के समय सबसे कलेक्शन करने के बाद महात्मा जी अपने वायदे के अनुसार उन लोगों को लेकर के सेठ जी के पास पहुंचे कि सेठ जी ये लीजिए आपका चेक, हम अपने वायदे के अनुसार आपके पास पहुंच गए और आप अपना चेक लीजिए। तो सेठ कहने लगा कि आज मुझे पता चला है कि देने की खुशी क्या होती है, दिन भर लोगों के इतने मेरे पास फोन आए हैं, इतना लोग खुश हुए हैं मेरे इस काम से कि मैंने ये चेक आपको पकड़ाया, और लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं, और उनका बात को सुन सुन करके मेरे अंदर भी इतनी खुशी आई है, तो मैं ये चेक आपसे वापस नहीं लेता, ये आप लगा दो। तो आप देखिए कि उस सेठ ने महसूस किया कि देने की खुशी क्या होती है। तो ऐसे ही हम भी जब देने की भावना अपने अंदर दृढ़ता पूर्वक क्रिएट करेंगे कि हमें देना है, प्यार भरी दृष्टि देनी है, दो मीठे बोल देने हैं, कोई पास में आया है चिंता लेकर के तो उसको ज्ञान के 2 वर्षन सुना के उसको चिंता मुक्त करना है, किसी को वरदान देना है, किसी को शांति देनी, जिसको जो चाहिए क्योंकि हम बाबा की चलती फिरती मूर्तियां हैं, वो तो मंदिर में जड़ मूर्तियां होती हैं, जो ऐसे वरदान का हाथ उनका होता है, आईज भी उनकी प्यार भरी होती हैं, फेस एक्सप्रेशन भी उनका वरदानी और बड़ा हसमुख और मुस्कुराहट वाला होता है, तो लोग पत्थर की मूर्तियों से जाकर के भाग भाग के घर के काम काज को छोड़ के 2-5 मिनट जाते हैं कि दर्शन करके 2-4 मिनट का ही सुकून ले आएंगे, परंतु हम बाबा के बच्चे चलती फिरती मूर्तियां हैं, चलती फिरती मूर्तियां, तो हमारे पास कोई आवे नजदीक आवे तो क्या होना चाहिए, हमारे द्वारा भी आशीर्वाद वरदान दुआएं खुशी शक्ति शांति जो जिस आत्मा को चाहिए वैसा वैसा हम उस आत्मा को देते चले जाएं, तो हम भी क्या बन जाएंगे? बाप समान वरदानी मूरत। और हम सब का लक्ष्य भी क्या है? यही तो लक्ष्य है ना, कि हमें बाप समान बनना है। संगम युग का हमारा लक्ष्य हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता भी क्या करता है? वो देता ही रहता है, उड़ता रहता है, देता रहता है, बांटता रहता है अपनी शक्तियों को। तो ऐसे ही मैं फरिश्ता हूं। मेरा इस दैहिक धरनी से, दैहिक रिश्ते नातों से कोई रिश्ता नहीं। मैं फरिश्ता यानी इन सब से ऊपर उड़ने वाला, फर्श नहीं लेकिन अर्श पर सदा रहने वाला मैं हूं फरिश्ता। तो ऐसा चलता फिरते जब डबल लाइट, कोई बोझ नहीं। अब बाबा भगवान के मिलने के बाद भी अगर मन पे मनो बोझ पड़ा रहे तो उसका फायदा क्या है, है ना? हम तो खुशी खुशी से कई बार बताते हैं कि हमें 37 इयर्स हो गए हैं इस बाबा के ज्ञान में, बाबा की सेवाओं में समर्पित हुए, लेकिन हमें 37 दिन भी नहीं, ऐसा लगता है 37 घंटे ही हुआ है। बहुत बार हम ऐसा बताते हैं, क्योंकि इतनी खुशी, इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सब कुछ से भरपूर बाबा कर देते हैं कि टाइम किधर गया पता ही नहीं लगता। क्योंकि जो खुशी का टाइम होता है, आप सबको अनुभव है कि वो कैसे भागता है, और जो दुख का टाइम होता है ऐसा लगता है वो खड़ा हो गया है, चल ही नहीं रहा। कई बार होते हैं ना घरों में कोई ऐसे सरकमस्टांस हो जाते हैं तो एक रात भी निकालनी लोगों को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऐसा परेशानी का माहौल हो जाता है जैसे रात ही काटना कठिन हो गया। लेकिन खुशी का जब टाइम होता है वो ऐसे फटाफट निकलता है। तो ऐसे ही जब बाबा के हम बच्चे बनते हैं, इतनी बाबा की दुआओं और छत्र छाया में पलते हैं, अपनी गोद में परमात्मा हमको पाल रहे हैं, तो बताइए इससे बड़ा भाग्य और इससे बड़ी बात दुनिया में और क्या हो सकती है। तो इसलिए जीवन का भी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है कि जब से बाबा ने अपना बनाया, अपनी गोद में लिया, तो बस दैहिक रिश्ते नातों से दूर एक ऐसा बाबा उड़ता पंछी और ऐसा फरिश्ता बना देते हैं कि बस उन्हीं की बात, उन्हीं से प्यार, उन्हीं से सब कुछ, तुम्हीं संग बैठूं, तुम्हीं संग खाऊं, तुम्हीं से सुनूं, तुम्हीं संग रास रचाऊं, बस। कितना सुंदर, कितना आनंदित जीवन प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को दिया है। तो हम कहेंगे आनंद भी गया, परमानंद, परम आनंद में है हम सभी बाबा के बच्चे। इसलिए सदा ही बाबा के गुणों का गायन करते रहें, मन में बाबा की महिमा करते रहें, अपने भाग्य की महिमा करते रहें, संगम युग की महिमा करते रहें। बस इन्हीं गुणों के गीत गाते गाते हम सतयुगी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ओम शांति।